ओम शांति। प्राचीन रूस में एक राजकुमार की कहानी का वर्णन है जिसका नाम है ओलेग ऑफ नॉवगोरोड। जैसे ही वो जन्म लेता है, भविष्यवक्ताएं भविष्यवाणी करते हैं कि इसकी मृत्यु का कारण उसी का घोड़ा बनेगा। तो जैसे ही वो ओलेग बड़ा होता है और उसे इस भविष्यवाणी का पता चलता है, तो अपने घोड़े को वो दूर कहीं भिजवा देता है और अपने मंत्री उसे कहता है कि इसको मार दिया जाए, और वो वैसा ही करते हैं। घोड़े को कहीं दूर ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। बहुत बहुत साल गुजर जाते हैं, फिर भी उसे अपनी मृत्यु का भय तो होता ही है। घोड़ा तो चला गया जिसकी वजह से मृत्यु होने वाली थी, परंतु वो भय पकड़े रहता है और कई सालों के बाद उसके मन में संकल्प आता है कि उस घोड़े का क्या हुआ, वो घोड़ा है कहां। तो लोग कहते हैं कि उसे तो मार दिया और उसे दफना भी दिया। वो कहता है मुझे उस जगह ले चलो जहां उसको मारा था और जहां उसको दफनाया था। और वो वहां पहुंचता है और उसे वो स्थान दिखाते हैं जहां उसे दफना दिया गया था, और अपने पैरों से जूतों से वो कुरेदता है जमीन को। और जैसे ही कुरेदता है, एक सांप वहां से निकलता है और उसको मार देता है, उसको डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे भारत की कहानियां हैं प्राचीन पंचतंत्र की, उसी तरह रूस में द ट्रेजेडी ऑफ ओलेग की इस तरह की ये कहानी सुनाई जाती है, जहां व्यक्ति भयभीत रहता है जीवन भर मृत्यु से और स्वयं को बचाना चाहता है, परंतु फिर भी मृत्यु को रोक नहीं सकता और एक दिन मृत्यु आ ही जाती है। और मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है और मृत्यु के साथ वो सब कुछ जो इस जीवन में है, वो सारी भावनाएं, वो सब कुछ खो जाता है और फिर आत्मा एक नई यात्रा प्रारंभ करती है उन्हीं संस्कारों के आधार पर। पिछले रविवार की जो व्यक्तवाणी चली, आज हम उसका दूसरा जो भाग था, पार्टियों से मुलाकात, उस पर चर्चा करेंगे। दो पार्टियां थी और एक पंजाब का ग्रुप था। बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे टाइटल्स बाबा ने दिए, और सबसे पहला टाइटल था पंजाब ग्रुप से मुलाकात, तुम सब कौन हो। महावीर, महावीर अर्थात जो मृत्यु से न डरे। बाबा ने कहा सबसे बड़ा भय कौन सा है दुनिया में, मृत्यु का भय। मृत्यु से भी अधिक मृत्यु का भय डराता है, और हर व्यक्ति जीवन को पकड़ के है, जिसे जैन धर्म जीवेश न कहता है, जीने की इच्छा जीने से लगाव। ये जो जीवन से लगाव है और वो छूट ना जाए, इसका जो भय है, मृत्यु भय उसे डराते रहता है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु का भय। और इस संसार में आत्मा को यदि सबसे अधिक भय मृत्यु से है, तो सबसे अधिक प्यार किससे है? देह से। आत्मा का कैसा ये प्यार है देह के प्रति। देह देह को पाने के लिए आतुर होता है। कैसी आतुरता है, स्वयं को देह को पाने की तो है, उससे भी अधिक किसी और के देह को पाने की आतुरता है। और वही उसके दुख का भी कारण है। क्षणिक सुख को पाने की आतुरता, सारे प्राण जैसे व्याकुल हो जाते हैं देह को पाने के लिए। और जितना प्यार स्वयं की देह से होगा, उतनी ही आतुरता किसी और के देह को पाने की होगी। तो बाबा ने इसका क्या उत्तर दिया कि संसार के लोगों को सबसे अधिक भय मृत्यु का है, तुम्हारी क्या दशा है? तुम तो पहले ही मर चुके हो। क्या वास्तव में मरे हैं? जो मरे हुए हैं उन्हें मरने का क्या भय? सबसे बड़ी मृत्यु यहां अंदर ही घटित हो जाए, वो देह की मृत्यु से पहले, देहभान की मृत्यु, देह से आसक्ति की मृत्यु। और देहभान और देह के आकर्षण और देह की इच्छाएं और तृष्णाओं से होने वाले दुख दोष का निरंतर चिंतन करना, तो ही देह के आकर्षण से आत्मा मुक्त रह सकती है। आज सुबह की साकार मुरली, काम चिता पर बैठते हैं, क्या करता है? काम जलाता है। आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैतम दहति पावकः। आत्मा को आग जला नहीं सकती, परंतु काम जरूर जलाता है। आत्मा को वायु सुखा नहीं सकता, ना उड़ा सकता है, परंतु काम जरूर सुखा देता है और उड़ाता भी है, बहा ले जाता है विकारों के गर्त में। इसके लिए भगवान वाच, काम सबसे बड़ा अनर्थ है, काम सबसे बड़ा काटा है, काम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, काम सबसे बड़ी हिंसा है, काम सबसे बड़ा विष है, काम सबसे बड़ा दुख है, काम सबसे बड़ा छलावा है, काम आदि मध्य अंत दुख देता है, काम सबसे बड़ा विष। कैसे कैसे महावाक्य प्रयोग किए भगवान ने। लोग जिसे सुख का साधन समझते हैं, भगवान कहता है वो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। कैसी सूक्ष्म बातें कही है। तो सबसे पहला स्वमान, पांच स्वमान दिए। सबसे पहला मैं कौन हूं? महावीर। महावीर अर्थात जिसे मृत्यु का कोई भय नहीं, महावीर अर्थात जो मर चुका है, महावीर अर्थात मरजीवा, महावीर अर्थात जो पहले ही मरा है उसे मृत्यु क्या भयभीत करेगी। मृत्यु के भय से जो परे है, जो मृत्युंजय है, वो है महावीर। लोग मृत्यु से डरते हैं और यहां हमारी कौन सी तैयारी चालू है? निकलकर बाहर जाने की, देह से ही पहले ही तैयारी करनी है, नहीं तो मृत्यु डराएगी। और इसका भी एक कारण बाबा ने बताया, वो कौन सा, क्यों डरते हैं लोग मृत्यु से, क्या कारण है, क्या कारण है? क्योंकि कुछ पाना था, कुछ करना था, वो अपूर्ण रह गया, इसलिए पूर्ति नहीं हुई है। ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, और अचानक द्वार पर मृत्यु आ गई तो उसे ढकेलने की कोशिश करता है व्यक्ति। जैसे इसके पहले भी कभी सुनाया था, एक मूर्तिकार जो इतना दक्ष था अपनी मूर्ति कला में कि यदि कोई मूर्ति बना दे तो ये पहचानना मुश्किल था कि ये वास्तव में मनुष्य है या उसकी मूर्ति है, ये व्यक्ति है या उसकी मूर्ति है। एक भविष्यवक्ता उसे कहता है कि इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु का देवता तुम्हें लेने आएगा। तो वो एक युक्ति रचता है मृत्यु को धोखा देने के लिए, काल को धोखा देने के लिए 11 मूर्तियां बनाता है समान एक स्तरी की, और उसी की अपनी, और 12वें स्थान पर स्वयं खड़ा हो जाता है। तो जब मृत्यु का फरिश्ता आता है, एंजल ऑफ डेथ, निर्धारित समय पर देखता है, एक आदमी को लेके जाने का आदेश था, यहां तो 12 है, अब इनमें से सही कौन, क्योंकि सभी एक सरी के दिखते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वापस चला जाता है। मूर्तिकार बड़ा खुश हो जाता है, मैं बच गया, और भगवान से जाकर वो फरिश्ता कहता है, विदेश की कहानियों में एंजल ऑफ डेथ्स भी होते हैं, कुछ एंजल अच्छे होते, कुछ मौत के भी फरिश्ते होते, जिनको काम ही है आत्मा को लेके आना, जिनका काम। तो वो भगवान से अपनी दुविधा को कहता है, भगवान कहता है डोंट वरी, और उसके कान में मंत्र फूंक देता है, अब जाओ ये करो। तो वो फरिश्ता जाता है और वो 12 मूर्तियां खड़ी है, और घूमते घूमते कहता है, बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत अच्छी मूर्ति है, पता नहीं कि बहुत अच्छा है, पता नहीं किसने बनाया, परंतु एक फॉल्ट रह गया है बस, बाकी तो सब अच्छा है, एक गलती कर दी बस बनाने वाले ने। तो वो जो व्यक्ति खड़ा होता है, गलती, और मेरे से कहता है, कौन सी गलती? कहता है, यही गलती, चलो यही गलती रह गई। कौन सी? कि अभी तक मैं गलती कर सकता हूं, ये भाव। तो मृत्यु से तो कितना बचने की कोशिश करता है, परंतु बच नहीं पाता, भयभीत भयाक्रांत करती है मृत्यु। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास नहीं है। कल की मुरली में था, एक ही पाठ पक्का कर लो, मैं आत्मा हूं, इस आत्मा का ही पाठ, इस आत्मा की प्रैक्टिस करते रहो दिन रात। तो ये भी भाव रखना कि कुछ करना बाकी नहीं रहा, यहां सेवा की बात नहीं चल रही है, लौकिक संसार, अगर अभी के अभी मृत्यु हो जाए, अभी के अभी आत्मा तन से निकल जाए, अभी के अभी जब प्राण तन से निकले, तो कोई संकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं, अभी अभी जाने को तैयार है, ना किसी को फोन करना है, या करना है, घर पे फोन नहीं करना है बताने के लिए कि मैं जा रही हूं, करना है कि नहीं करना है, किस किस को करना है, फोन करके बताना नहीं है अपने बेटे को कि मैं जा रही हूं, कोई फोन नहीं करना, किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कोई मैसेज नहीं करना, लास्ट, दिस इज माय फाइनल मैसेज, कुछ टाइप नहीं करना, कुछ नहीं करना है, ऐसी तैयारी जाने की, इस देह से बाहर निकलने की। सारे हिसाब पूरे हो गए, ये सोचना। इसके लिए एक सूक्ष्म बात इससे एक और जुड़ी है, नए हिसाब नहीं बनाने हैं, और जिनसे है फटाफट चुक तू कर दो। कुछ अतीत की ऐसी यादें हैं दर्दनाक, वो भी एक अटैचमेंट है जिसको आत्मा ने पकड़ के रखा है, और जो बीत गया तो बीत गया, अब उसका क्या चिंतन। वो परछाई मात्र थी, परछाई को सत्य नहीं समझ लेना, आई और गई, पकड़ के नहीं रखना है, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे अंतमति सो गति, जो हो गया वो हो गया, और वो होना ही था और बहुत जरूरी था होना, और वो हिसाब था, दैहिक हिसाब भी था, कार्मिक अकाउंट भी था, और जो था वो था बस। उस अपराध भाव से ग्रसित चित्त कभी पुरुषार्थ नहीं कर सकती, इसलिए जो हो गया वो हो गया, अकाउंट पूरे हुए, अब वापस जाना है, इसी भाव को प्रगाढ़ करना है, कुछ करना बाकी नहीं रहा, हो गया है। तो ये सबसे पहला सम्मान ये है महावीर बनना। दूसरा सम्मान था मैं एवर रेडी हूं, सारी तैयारी हो गई है जाने की। कौन सी तैयारी, जाने के लिए किस तैयारी की आवश्यकता है, जाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, जाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। सारे अटैचमेंट समाप्त, नष्टो मोहा स्थिति, और सारे गुण, सारी शक्तियां, याद, और वो खींच, जाना है जाना है जाना है, एक लगन, ये देह यहीं छूट जाए, मैं जा रही हूं, और इस संसार से वैराग, इस संसार के लोगों से वैराग, इस संसार की बातों से वैराग। जहां बात है वहां बाप नहीं, बात अंदर घुसी अर्थात बाप बाहर, संसार की सारी बातें व्यर्थ की बातें, अतीत की बातें, भविष्य की चिंताओं की बातें, ऐसा चित्त कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसके लिए स्वयं स्वयं को मुक्त कर देना है इन सब बातों से, और विधि है संकल्प, और विधि है उसी संकल्प की पुनरुक्ति, बार बार रिपीट करना उस संकल्प को। हमारे बंधनों का कारण कौन है, हम स्वयं। हमारे दुख का कारण कौन है, हम स्वयं। किसने हमें पकड़ के रखा है, हमने स्वयं। सारे बंधन मानसिक है, बाहर के अगर होंगे तो 10% ज्यादा नहीं, अधिकतर जो है वो मानसिक है। एवर रेडी, रेडी अर्थात तैयार, हम तैयार हैं। वो आ जाए और कहे चलो तो हम क्या कहे, हम है तैयार चलो। वो कहे चलो दिल दार चलो तो हम क्या कहेंगे, हम है तैयार चलो, तो हम तैयार हैं। ये भाव निरंतर रखना, निरंतर मृत्यु का चिंतन बहुत आवश्यक है। एक भाई शायद वरंगल का, मधुबन आया, मम्मा से मिला, कमरे में गया और शरीर छोड़ दिया। एक दूसरा भाई किसी सेवा केंद्र में नियमित रूप से सुबह 6 बजे जाता था, योग करता था, फिर मुरली क्लास सुनता था, 6 बजे बाबा के कमरे में पहुंचा, बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। कुछ समय पहले हॉस्पिटल में एक माता आई थी मॉरिशस की, पांडवम ने आई और 2 दिन के बाद ही अचानक कुछ बीमारी हो गई, सीरियस हो गई, इतनी ज्यादा सीरियस, हॉस्पिटल में कुछ दिन थी, 2-3 दिन वेंटिलेटर और शरीर छोड़ दिया। बाद में पता चला उसका बेटा जब आया लेने देखने, वो कहता था कि मेरी माँ ने जाते समय कहा था मैं मधुबन जा रही हूं पर वापस नहीं आऊंगी, संकल्प करके आ गई थी। कुछ समय पहले मधुबन में भट्टिया हुई थी, 2-3 साल पहले एक माता आई थी गुजरात से, शाम को पहुंचा ग्रुप, शांति स्तंभ पर बैठी, कमरे में गई और कुछ हो गया और एकदम बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके आए पर होती परंतु वो मर चुकी थी, ब्रॉड डेड। मृत्यु कभी भी कहीं पर भी आ सकती है। क्या ऐसा कोई कह सकता है कि सुबह का सूरज मैं देखूंगा, रात भर मुझे कुछ भी नहीं होगा, कोई कह सकता है क्या? कोई भी नहीं कह सकता। हर समय अंतिम घड़ी है, जैसे बस यही समय है, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई समय नहीं। जब निरंतर मृत्यु का ख्याल होगा तब कोई पाप और विकर्म नहीं हो सकता, फिर हमारा समय उस अतीत की यादों में भी वेस्ट नहीं होगा। तो पहला सम्मान है मैं महावीर आत्मा हूं, अर्थात मृत्युंजय। मृत्युंजय अर्थात ये नहीं कि मृत्यु होगी नहीं, परंतु मृत्यु के भय से जो मुक्त है और जिसे निरंतर मृत्यु का भी ख्याल है कि कभी भी हो सकती है। दूसरा सम्मान मैं एवर रेडी आत्मा हूं। तीसरा सम्मान, ये पंजाब ग्रुप का ही चल रहा है अभी, मैं शांति देव हूं, शांति देवा हूं। संसार में सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? शांति की है। सभी अशांत है, सभी दुखी है, और दुख का कारण है चाह, इच्छा। शांति की इच्छा भी दुख का ही कारण है, चाहे कोई भी इच्छा हो, इच्छा ही दुख का कारण है। फिर वो अच्छी इच्छा भी हो, पर इच्छा तो है, वही दुख का कारण है। चाह ही दुख का कारण है। ये चाह ही हट जाए तब दुख समाप्त होगा। तो बाबा ने कहा तुम कौन हो? शांति देव हो। तुम कौन हो? शांति का संदेश देने वाले हो। तुम कौन हो? संदेशवाहक, शांति के संदेशवाहक। संसार में अशांति है और ढेर सारे 2-3 उदाहरण दिए यहां पर बाबा ने। स्थान के लिए भी कहा कि यदि कोई, जैसे कोई रोगी हॉस्पिटल में आ जाए, वैसे संसार की आत्माएं जैसे यहां आ जाए तो उनको लगे ये शांति का कोना है, उनको लगे कि ये शांति का स्थान है, उनके शिविर कराओ, उनको शांति की अनुभूति कराओ। और जिन्हें विश्व को शांति देनी है वो स्वयं जब तक शांत नहीं, विश्व को भी शांति नहीं दे सकते। हर मन अशांत है, मन में इच्छाओं की उथल पुथल है, संग्राम है, कपट संग्राम, द्वंद है, झूठ का द्वंद। तो ऐसे अशांत संसार में बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे कोई कमरा है वहां पर अंधेरा है, तो वहां पर कैसे मिटा दे अंधेरा? चिराग से। तो तुम भी संसार का अंधियारा मिटाओ। ये कितने ऊंचे संकल्प है। यदि कोई व्यक्ति अपने ही दुख दर्द में डूबा हुआ है तो संसार का कल्याण क्या करेगा? अपने ही पुरुषार्थ में केवल लगा हुआ है, किसी एक बात से निकलने में, जहां से निकल ही नहीं पा रहा है, तो वो विश्व का कल्याण कब करेगा? ये सोचकर कि पहले मुझे अपना कल्याण करने दो, निकलने दो पहले इस दुख से, तो सारा जीवन बीत जाएगा फिर भी नहीं निकलेगा। जिस भी स्थान पर है और जिस भी दिशा में दशा में है, वहीं से विश्व कल्याण चालू कर देना है। स्वयं यदि अशांत है तो दूसरों को शांति की सकाश देना चालू कर देना, शांत हो जाएंगे। स्वयं यदि दुखी है तो दूसरों को खुश करना चालू कर देना, स्वयं खुश हो जाएंगे। मनोहर इंदिरा दादी थी पहले इधर श्याम कैंसर और में, कोई बहन यदि आ जाती थी और कहती थी दादी मैं बहुत दुखी हूं, दादी कहती थी जाओ कोर्स कराओ, ज्ञान सुनाते जाओ। आज की मुरली में बड़ा ही पावरफुल वाक्य आया है एक, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में मनुष्य स्नान कर स्वर्गवासी बनेंगे। क्या कहा बाबा ने, तुम सब कौन हो, चैतन्य ज्ञान गंगाए हो, उसमें मनुष्य स्नान करके क्या बनेंगे, स्वर्गवासी बनेंगे। वो जमुना में नहीं जाते पाप धोने के लिए, वास्तव में ज्ञानमृत की धारा यह है जो तुम्हें 21 जन्मों के लिए दुख से छुड़ाती है। ये दो बड़े पावरफुल स्टेटमेंट है आज की मुरली में, वास्तव में ज्ञानमृत की धारा यह है जो तुम्हें 21 जन्मों के लिए दुख से छुड़ाती है। और तुम सब कौन हो, चैतन्य ज्ञान गंगाए हो, जिसमें मनुष्य स्नान करके क्या बनेंगे, स्वर्गवासी बनेंगे। और इंद्रप्रस्थ निवासी कौन है, देह और देह के संबंध थोड़ा ठीक ठाक करो, उसको स्लोगन को रीएडजस्ट करो, थोड़ा रीअलाइन। क्या है, देह और देह की दुनिया और पुराने संबंध, ऊंचे उड़ने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी है। तो इसके लिए इंतजार नहीं करना है, पहले मुझे पूरा करने हो जाने दो संपूर्ण, फिर मैं करूंगा। जहां है वहीं से करना चालू कर देना है। और यदि गलतियां हुई है, यदि पाप हुए हैं, यदि विकर्म हुए हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी, तो अब उनसे सीखना है और मदद करनी है दूसरी आत्माओं को, ताकि वो ये गलती ना करें। हमने तो कर दी, पर बहुत सारी नई आत्माएं अभी अभी आई हुई, उनको सिखाना है। इसके पहले भी बताया था, किसी सूफी संत ने कहा है, मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अधिक होशियार हूं, मैं तुमको बताता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अधिक होशियार हूं, क्योंकि गलती तुमसे ज्यादा मैंने की है, इसलिए मैं तुमको सिखाता हूं। तो शांति देव, शांति देने वाले, लोग तुमको पूछे तुम क्या करते हो, तो उनको बोलो इस संसार में लोग कपड़ा दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा आवश्यकता हर मन को किसकी है, शांति की है। तो वो हम वही देने आए हैं, मोस्ट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। जिसको जो चाहिए वो हम उसे देने आए, और सबसे ज्यादा आवश्यकता हर एक को किसकी है, शांति की, वो हम देने आए। जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात, वही हम उनको देने आए। तो तीसरा सम्मान कौन सा है, मैं शांति देव हूं, शांति का संदेश वाहक हूं। बाबा ने कहा दानी वरदानी महादानी, देने वाला हूं। ये संकल्प कि मैं शांत हूं और मुझसे सारे विश्व में शांति की किरणें फैल रही है, इसके साथ एक दूसरा संकल्प जोड़ना है प्यूरिटी का। मुझे इस संसार का एक एक कण पवित्र करना है, एक एक पार्टिकल पावन बनाना है, यह लक्ष्य है। एक कण भी वंचित न रहे मेरी सकाश से, इस वसुंधरा इस सृष्टि का एक एक कण मुझे पावन बनाना है, ऐसी प्यूरिटी की शक्ति धारण करनी है। आज के सुबह के मुरली में प्रश्न क्या था, धर्मों की स्थापना कैसे हुई, पवित्रता के कारण। कब? उस समय जब संसार में बहुत पवित्रता थी, आज की तुलना में द्वापर में बहुत अधिक पवित्रता थी, आज जैसा भ्रष्टाचारी संसार नहीं था। वो महाभारत के जितने पात्र हैं, बुरे से बुरे, पर उनमें भी बड़ी महानता थी, चाहे दुर्योधन हो। आज के किसी व्यक्ति की तुलना में वो बड़ा महान है। रावण ले लो, रावण, ज्ञानामृत में एक आर्टिकल आया था कभी, रावण आज के व्यक्तियों से बात कर रहा है कि तुम मेरे से ज्यादा गिरे हुए हो, मैंने क्या किया था और तुम क्या करते हो, मैं खुलेआम करता था, तुम छुप छुप के करते हो, पूरा उसमें वर्णन था। उस समय जब संसार में इतनी पवित्रता थी और पतित होना भी चालू हुआ था, उस समय भी जो धर्म की स्थापना हुई वो प्यूरिटी के बल से हुई। अब यदि धर्म की स्थापना होनी है तो वो भी प्यूरिटी के बल से होगी, परंतु इस प्यूरिटी में और उस प्यूरिटी में कितना अंतर होगा, यहां अभी बहुत अधिक प्यूरिटी की आवश्यकता है। संकल्प संकल्प प्योर, देह मिट्टी है, वैराग हो जाए इससे। तो मैं शांति देवा हूं, सारे संसार को शांत करने वाली ऐसी दिव्य आत्मा, ये तीसरा सम्मान। फिर चौथा सम्मान, फर्स्ट पार्टी से मुलाकात, मैं कौन हूं, फरिश्ता हूं। सारा वर्णन केवल फरिश्ते का ही है। क्या क्या कहा फरिश्ते के विषय में, डबल लाइट, हल्का, बोझ नहीं, निर्बंधन, कोई भी लगाव नहीं, कोई भी झुकाव नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं, नाता नहीं, संबंध नहीं, सरोकार नहीं किसी से, कोई वास्ता नहीं किसी से, कोई संपर्क नहीं किसी से, मानसिक रस्सी नहीं कोई जो खींची खींच के रखे, यदि कोई रस्सी है तो नीचे आ जाएंगे। फरिश्ता अर्थात संपूर्ण नष्ट मोह, फरिश्ता अर्थात किसी में भी मोह नहीं, फरिश्ता अर्थात ऐसी निर्मोही अवस्था, अपने बंधनों को चेक करना है, किस में लगाव तो नहीं। यदि जिससे सबसे अधिक प्यार है वो सामने ही मर गया तो क्या हालत होगी, हलचल में आ जाएंगे तो फेल। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा हमारी मम्मा चली गई, तो बाप क्या कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है, हमारी मम्मा चली गई, अब तुम भी जाओगे, अब तुम्हारा नंबर है। किससे मोह रखे, किससे अटैचमेंट रखे, किससे आसक्ति रखे, क्योंकि आज तक जिस जिस से आसक्ति रखी सब ने धोखा दिया या प्यार किया बहुत। कोई देहधारी कभी सच्चा निस्वार्थ प्यार कर ही नहीं सकता, जो प्यार कर रहा है अपना निहित स्वार्थ है उसके पीछे, जो प्रेम दे रहा है उसके बदले में उसे देह का सुख चाहिए हमारे, स्वार्थ है। इसके लिए किसी एक पुरुष से वैराग नहीं, किसी एक स्त्री से वैराग नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग और सभी पुरुषों से वैराग, ये वास्तविक वैराग है। नहीं तो एक को छोड़ा, इसने धोखा दिया, अब दूसरा पकड़ो, उसने भी धोखा दिया, तीसरा पकड़ो, उसने भी दिया, चौथा पकड़ो, ये जारी रहता है। इसके लिए किसी एक से नहीं, सबसे। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात बोझ रहित, फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, फरिश्ता अर्थात कोई लगाव नहीं, फरिश्ता अर्थात कोई रस्सी नहीं, फरिश्ता अर्थात कोई रिश्ता नहीं। देह से भी रिश्ता है, जैसे उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे इस संसार में कोई किसी व्यक्ति से रिश्ता ही नहीं है तो उसकी याद आती है क्या? याद तो उसकी आती है जिससे रिश्ता जोड़ के रखा है। कभी एक वरदान था मुरली में, बीज संबंध है। यदि किसी से दुख मिल रहा है तो उसके साथ जिस तरह का संबंध बनाया है उस कारण दुख मिल रहा है। उस संबंध को जड़ से हटा दो तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। फरिश्ता, बाबा ने कहा ये फरिश्ता शब्द अक्षर याद रखो, इस फरिश्ता अक्षर को भूलना नहीं है और निरंतर एक ही धुन अंदर से हो कि मुझे अपने सभी बंधनों से मुक्त होना है। इस किसी भी कोई भी पिंजड़ा ना हो, कोई रस्सी ना, कोई धागा ना, कोई रग नहीं, कोई सलाखे नहीं, कोई बेड़िया नहीं, कोई चेन्स नहीं, कुछ नहीं, निर्बंधन चलना है। एक ईसाई धर्म में एक छोटी सी बच्ची होती है स्कूल की, जब क्रिसमस होता है तो वो लोग हमेशा नेटिविटी प्ले कहते हैं उसको, प्ले करते हैं, जीसस क्राइस्ट का जन्म दिखाते हैं, एक पालना जिसमें वो, फिर उधर से तीन लोग आ रहे हैं, तीन महापुरुष जिस जो भविष्यवाणी कहते करते हैं कि वहाँ ये तो ईश्वर पुत्र जन्म लिया है, ऐसा जैसे हम लोग रामलीला करते हैं भारत में, वो लोग ये करते हैं। और वहाँ एक छोटी सी बच्ची होती है, उसको भी सिखाते हैं, उसको काम दिया जाता है एंजल का कि तुम एंजल बनो, और उसको सिखा देता है तुम कौन सी लाइन तुमको रिपीट करनी है। पर वो रहती है बहुत इंटेलिजेंट, वो अपना भी थोड़ा दिमाग चलाती है हमेशा, तो उसको कुछ लाइन दी जाती है तो दिखाया, एक छोटा सा बच्चा पालने में रखा हुआ है, उधर मदर मैरी है और उसके पिताजी, और वो मदर मैरी से कहती है कि बधाई हो तुमको कि तुम्हारे घर में ये जीसस क्राइस्ट ईश्वर का पुत्र जन्म लिया है। पर वो अपनी बुद्धि चला के एक दूसरी लाइन ऐड कर देती है जो कि नाटक में नहीं रहती है। वो कहती है पर इससे अटैच मत होना क्योंकि ये जाने वाला है, बाय ईस्टर ही विल बी गॉन। ईस्टर अर्थात जो जीसस क्राइस्ट का दिखाते हैं, तीन दिन के बाद वो जन्म लेता है वापस सूली पर चढ़ने के तीन दिन बाद, उसको ईस्टर कहते हैं। वो कहता है इससे अटैच मत होना तुम, मदर मेरी को कहता है, कहती है छोटी बच्ची कि बधाई हो कि तुम्हारे घर में बच्चा हुआ है पर अटैच मत होना बिकॉज ही विल बी गॉन बाय ईस्टर। वो चला जाएगा, उसको सूली लगेगी और वो जाएगा, इसलिए अटैच मत होना। तो छोटा सा अपनी बुद्धि से ऐड कर देती है, किससे अटैच हो? रावण ने कहा सब मुर्दे है, लाश है सब जिंदा, और बिना ऐसे वैराग्य के अध्यात्म में, इस ज्ञान के मार्ग में पुरुषार्थ होता ही नहीं। काली जा रहे, अमृत वेला कर रहे, मुरली सुन रहे, पर है वही जहां 10 साल पहले थे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। सूक्ष्म वैराग्य, सूक्ष्म चिंतन तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अतीत की यादें इतनी गहरी है, आधे से ज्यादा ब्राह्मण तो उसी में डूबे हुए हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, द्वापर युग से तुमने जो पाप किए हैं उन्हें भस्म करने के लिए तुम्हें उतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप। तो ये चौथी बात थी, मैं कौन हूं? डबल लाइट फरिश्ता हूं, हल्का हूं, बोझ रहित हूं, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। पांचवा सम्मान, लास्ट पार्टी, दूसरी पार्टी, मैं संदेशी हूं। मैं कौन हूं? संदेशी। कौन सा संदेश देने वाली? शांति का पैगाम देने वाली संदेशी हूं। और बाबा ने यहां पर एक बहुत अच्छी बात कही है, ऐसे टाइटल्स जो तुमको मिले हैं दुनिया में और किसी को भी नहीं मिली। केवल अपने टाइटल्स को याद रखना, अपने टाइटल्स के नशे में रहना। कहीं एक अव्यक्त महावाक्य थे बाबा के, बाप के टाइटल बच्चों के समान। जो भी दुनिया वालों ने भगवान के लिए कहा है वो सब तुम्हारे समान है। बाप के टाइटल बच्चों के समान। जो जो उसको कहा उसमें मास्टर शब्द ऐड करो और वो अपना टाइटल ले लो। वो ज्ञान का सागर तो तुम मास्टर, वो विद्या सागर तुम मास्टर विद्या सागर, वो निर्मोह का सागर है। बाप समान बनना है तो निर्मोह बनना होगा, निर्मोह का सागर बनना पड़ेगा। वो निर्भय का सागर है, वो अकर्ता है, अभोक्ता है, असोचता है, ये सब उसके गुण है। धैर्य का सागर है, धैर्यवत अवस्था होनी चाहिए। आज ही है, कल था, परसों है, तो ऐसी धैर्यवत अवस्था। तो ये 500 मान। पहला, मैं महावीर हूं, मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं। अभी भी आ जाए तो हम हैं तैयार, चलो। अभी मृत्यु हो चुकी है, महावीर का दिखाया है वर्धमान महावीर, जैन धर्म के साथ संस्थापक। उनको इतना वैराग्य आ जाता है, इतना वैराग्य आ जाता है, वो अपनी माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे संन्यास लेना है। माँ कहती है बिल्कुल नहीं, जब तक मैं हूं हिलना नहीं यहां से। तो वो तुरंत मान लेते हैं, ऐसा बड़ा कम होता है, वो मान लेता है। और फिर धीरे एक दिन माँ की मृत्यु हो जाती है, फिर उनका भाई वो फिर आते वापस, कहते हैं अब जाऊं। उसका भाई कहता है कहां जा रहे हो, अब मैं हूं, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुमको। परंतु उस टाइम से, उस समय से बाद में वो जैसे जिंदा लाश बन जाते हैं, पर जैसे है ही नहीं। घर में रह रहे परंतु कोई मतलब ही नहीं किसी से। फिर भाई भी परेशान होके कहता है तुम्हारा होना ना होना समान ही है, तुम जा सकते हो। मर्जीवा है और नहीं है, ऐसे ही है। तो इस संसार में ऐसे रहो जैसे यहां हो ही नहीं, किसी चीज से प्रभावित नहीं, यहां का कुछ नहीं चाहिए, सब व्यर्थ। ऐसा सूक्ष्म आंतरिक वैराग इस संसार के प्रति। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है अमेरिका के स्पीच में, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, विथ इट्स शिकेनरी, विथ इट्स चर्चेस एंड ब्लैकगार्डिज्म, विथ इट्स फेयर फेसेस, विथ इट्स हाउलिंग राइटियसनेस ऑन द सर्फेस एंड अटर हॉलोनेस विद इन, विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। वो लिखते हैं या उन्होंने कहा कि मुझे इस संसार से घृणा है। कैसे संसार से? दुस्वप्न है, नाइटमेयर, ऐसे संसार का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, स्वप्न है ये केवल एक, सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, यहां पर सब कुछ बिकता है, बाजार लगा हुआ है, सारे व्यक्ति स्वार्थी है। विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा चेहरा दिखाते हैं पर अंदर से दिल खोटे हैं सबके, केवल चमड़ी गोरी है बस, दिल खोटे हैं। ब्लैकगार्डिज्म, शिकैनरी, डिसेप्शन है यहां, ऐसा संसार। आई हेट दिस वर्ल्ड, बाबा कहते हैं ये छीछी संसार है, तुम्हें इससे वैराग होना चाहिए। तो सबसे पहला समान, मैं महावीर हूं, अर्थात मृत्युंजय, मृत्यु का कोई भय नहीं। मृत्यु अभी भी आ गए, आ जाए तो चलो, कुछ किसी को फोन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसी तैयारी। दूसरा, मैं एवर रेडी हूं। तीसरा, मैं शांति दूत, शांति संदेशवाहक, शांति दाता, शांति देवा हूं। सबको शांत करना है, इस सृष्टि के कण कण को शांत करना है, इस सृष्टि के कण कण को पावन बनाना है। कितना बड़ा काम है, एक एक पार्टिकल को पावन बनाना है अमित भाई, एक भी पार्टिकल रहना नहीं चाहिए, तुम्हारी सकाश से वंचित नहीं रहना चाहिए। कितना बड़ा काम है ये। तीसरा सवाल, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात शरीर से कोई लेना देना नहीं, फरिश्ता अर्थात शरीर का जो आकर्षण है मिट्टी है वो, इस शरीर से क्या अटैच्ड, सारा संसार पागल है इस शरीर के मिलन के लिए, शरीर शरीरों से मिलना चाहता है, ऊपर के सारे शब्द दिखावे मात्र है, अंदर से काम ही धधक रहा है। ऐसे विकारी संसार में संपूर्ण प्यूरिटी का व्रत लेना, ऐसे विकारी संसार में देह के प्रति ऐसा धधकता वैराग, यही हमारी महानता है और यही भगवान स्थापन करने आया है। पतित पावन आज सुबह की वाणी वही है, दूसरा कोई सदगति नहीं कर सकता। इसके लिए इस धारणा को फिर मजबूत करना है, फरिश्ता अर्थात कंप्लीट प्योर। बाबा ने कहा है भगवान का जो दिल तख्त है वो कैसा है, बहुत प्योर है, और उस पे यदि बैठना है तो उतना ही प्योर बनना पड़ेगा, कोई नहीं बैठ सकता बिना प्यूरिटी के उस तख्त पर, इतनी प्यूरिटी है उसमें, स्वप्न तक भी प्योर हो जाए ऐसा प्यूरिटी से प्यार हो, उसका महत्व पता हो, और अपवित्रता से क्या नुकसान हो उसका भी पता हो, दोनों चीजें जरूरी है। अगर जिसे पता है वो इस संसार के टीवी सिनेमा वीडियो उनसे उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन्होंने ही विष घोला है हर मन में। इसके लिए सबसे पहले इसको बंद कर दो, उसमें कितनी भी अच्छी बातें हो नरक ही है वो, उसी ने पतन किया है। अगला सामान फरिश्ता में सब आ गया, फरिश्ता में सब आ गया, और लास्ट है मैं संदेशी हूं। संदेशी कौन सा, शांति की संदेशी, पैगाम देने वाली हो, और बाबा ने इतने बड़े बड़े टाइटल्स दिए हैं, वो टाइटल्स को याद रखना है, उसके नशे में रहना है। तो ये थी संडे की मुरली का दूसरा भाग। अब आज की मुरली में एक दो बातें बता दो फिर क्लास पूरा करते हैं। क्या कहा आज की मुरली में, नॉलेज ही क्या है, रहम है, और वो वाली पॉइंट छोड़ के बताओ, पुरुषार्थ वाली पॉइंट बताओ, वो गीता जयंती और वो जयंती वो सब नहीं बताओ, पुरुषार्थ की कौन सी पॉइंट्स थी। मुरली से पुरुषार्थ की बातें निकालनी है और जिस पे काम करना है। वरदान क्या था, वरदान क्या था, अमृत वेला क्या करना है, इतना परमात्मा प्रेम खींच लेना है, भर लेना है स्वयं में, कि कोई भी देहधारी का प्यार दिन भर में खींचे नहीं, याद ना आए किसी देहधारी की, किसी से कुछ मांगू, किसी से प्यार करूं, किसी को फोन करूं, किसी को SMS करूं, थोड़ा सा दे दो, केयर कर दो, प्यार दे दो, अटेंशन दे दो, मेरे तरफ ध्यान रखो, केयर सिंपथी पावर सुख शांति, किसी से भी कोई भी भीख नहीं मांगनी है। एक्सपेक्टेशंस, हमने ओम शांति कहा उसने किया ही नहीं, हमारे तरफ देखा ही नहीं, हम बीमार हैं हमको कोई मिलने भी नहीं आता है, हमको इतना दर्द है कोई पूछता भी नहीं, भोजन भी नहीं लेके आता हमारे लिए, ना केयर चाहिए ना अटेंशन चाहिए, ना प्यार चाहिए किसी का, ना सिंपथी चाहिए, ना पावर चाहिए, ना सुख चाहिए, ना शांति चाहिए किसी व्यक्ति से, ना किसी की सकाश, ना धन चाहिए किसी का, मांगना नहीं है, मांग अर्थात दुख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगना ही नहीं है, मांगना रोग है, बीमारी है, स्थूल नहीं सूक्ष्म मांगना, इधर से प्रेम चाहिए किसी का, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे मेरे बारे में पूछे, कोई मुझे मेरी तारीफ करे, प्रशंसा करे, थोड़ी तो टोकरी पहनाओ, कभी तो कहो कि मैंने अच्छा किया। क्यों किसी की स्तुति चाहिए? तुमने जो अच्छा किया ऊपर रिकॉर्ड हो गया है, भगवान के अकाउंट में जमा हो गया है, कोई आगे क्या कहेगा? तुमने रंगोली अच्छी निकाली, भोजन अच्छा बनाया, सेवा अच्छी की, कोर्स अच्छा कराया, क्लास अच्छा कराया, क्यों चाहिए? कच्चा फल है ये सारे, वर्जित फल, फॉरबिडन फ्रूट, इसको यहीं छोड़ दो। जो किया ऊपर जमा है। और क्या कहा आज? बाबा गाइड बन के आया है, उड़ने लायक तो बनो। सबसे लास्ट लाइन मुरली की, उड़ना है। माया ने क्या कर दिया है? पंख काट दिए। अरे रे रे, कोई कोई पंछी है, कोई उसको पकड़े और उसके पंख काटे, कैसा दिखता है दृश्य, कैसे उड़ेगा? वैसे माया ने हमारे पंख काट दिए। जटायु के कैसे काट दिए थे रावण ने? गिर गया था बेचारा। तो फिर से पंख धारण करने, प्यूरिटी के, ज्ञान योग के, तपस्या के, वैराग्य के, और उड़ना है आकाश में। तो ये आज की मुरली की कुछ बातें थी। अच्छा, ओम शांति।